ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं रमिता यादव। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र का 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन आज से काठमांडू में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा समेत विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। प्रथम राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रम का किए गए आयोजित। राष्ट्रपति भंडारी ने कहा ज्येष्ठ नागरिकों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन का वातावरण बनाने की है जरूरत। आगामी राष्ट्रीय सभा चुनाव की सुरक्षा के प्रबंध के बारे में केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ विचार विमर्श। और तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए भारत सरकार ने राजधानी दिल्ली में लगाया कर्फ्यू। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केंद्र का 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन आज से काठमांडू में शुरू हुआ है। महाधिवेशन का उद्घाटन करते हुए माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा कि महाधिवेशन के निर्णय से देश की राजनीति को नई दिशा मिलेगी। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि दलों के बीच सहकार्य और एकता बहाल कर राष्ट्रीय राजनीति की सभी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए महाधिवेशन महत्वपूर्ण दिशा निर्देश करेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउवा ने कहा कि मौजूदा सत्ता गठबंधन संविधान के क्रियान्वयन के लिए बना है, इसलिए यह गठबंधन पूरा समय तक कायम रहेगा। कार्यक्रम को नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता अनिल कुमार झा, नेकपा माले के महासचिव सीपी मैनाली लगात नेताओं ने संबोधित किया था। महाधिवेशन में देश भर से 1631 प्रतिनिधियों की सहभागिता है। इससे पूर्व आज नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय कमेटी बैठक ने महाधिवेशन के बाद पार्टी में 15 सदस्यों वाले केंद्रीय पदाधिकारी और 299 सदस्यों की केंद्रीय कमेटी होने का निर्णय किया था। माओवादी केंद्र द्वारा बहुपदीय व्यवस्था के साथ पारित विधान के अनुसार पार्टी में एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष से 6 उपाध्यक्ष, एक महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष समेत 15 केंद्रीय पदाधिकारियों का प्रावधान है। इससे पूर्व शुक्रवार की स्थायी कमेटी बैठक द्वारा सम्मेलन को महाधिवेशन में रूपांतरित करने के लिए किए गए निर्णय का भी केंद्रीय समिति की बैठक ने अनुमोदन किया था। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि ज्येष्ठ नागरिकों की अवहेलित होकर रहने की बाध्यता को निरुत्साहित कर उनके सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने का वातावरण बनाना जरूरी है। प्रथम राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक कोष द्वारा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित ज्येष्ठ नागरिक अभिनंदन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने ये बात कही। कार्यक्रम में राष्ट्रपति भंडारी ने इस साल से शुरू किए गए ज्येष्ठ नागरिक दिवस आयोजन की प्रशंसा की थी। मौके पर शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी ने विक्रम संवत 2051 साल में मासिक 100 रूपये से शुरू किए गए ज्येष्ठ नागरिक भत्ते को बढ़ाकर हाल में 4000 किए गए प्रसंग की चर्चा करते हुए कहा कि ये भत्ता ज्येष्ठ नागरिकों का सहारा है। बता दें कि विक्रम संवत 2051 से पूछ 11 गथे को ज्येष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन पहली बार इस साल से देशव्यापी रूप में सभ्य नागरिक की पहचान, ज्येष्ठ नागरिक का सम्मान के नारे के साथ राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनाना शुरू किया गया है। ज्येष्ठ नागरिक दिवस के मौके पर आज सिंह दरबार में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ने कहा कि ज्येष्ठ नागरिकों के सम्मानित और मर्यादित जीवन यापन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री देउवा ने आगे कहा कि ज्येष्ठ नागरिकों के ज्ञान, इल्म और अनुभवों का सदुपयोग करते हुए नई पीढ़ी को हस्तांतरित और पुस्तांतरित किया जाना जरूरी है। कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी ने कहा कि सभ्य और सुसंस्कृत समाज के निर्माण के लिए ज्येष्ठ नागरिकों को सम्मान मिलना चाहिए। बता दें कि प्रथम राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आज देश भर के विभिन्न स्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो 4G नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको फोर जी आफ्नो भन्या आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको फोर जी
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव की सुरक्षा सहित संपूर्ण देश की शांति सुव्यवस्था के विषय में समीक्षा और विश्लेषण किया गया। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में आज हुई समिति की बैठक में आगामी राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव की सुरक्षा प्रबंध के विषय में विचार विमर्श हुआ। ये जानकारी गृह मंत्रालय के सचिव टेक नारायण पांडे ने दी। गौरतलब है कि आगामी माघ 12 गति से 19 सदस्य पदों के लिए राष्ट्रीय सभा सदस्य का चुनाव होने जा रहा है। चुनाव के लिए देशभर के विभिन्न प्रदेशों में 8 मतदान स्थल और 14 मतदान केंद्र तय किए गए हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि बगैर विकास की राजनीति जनता के लिए उपयोगी नहीं होगी। आज सुनसरी के सप्तकोशी बहुमुखी कैंपस में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री कार्की ने कहा कि हम सदैव जनता की भलाई और विकास को केंद्र में रखकर काम करेंगे। उन्होंने हाल सप्तकोशी कैंपस में रहे सरकारी जमीन में 50 शैया वाली अस्पताल बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। आज देशभर में 219 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 283 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, वहीं 2 संक्रमितों की मौत हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी। आज देशभर 76,330 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत की राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सोमवार से दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस संबंध में सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू समेत कई अन्य पाबंदियां लगाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट आदेश है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए। सरकार नए साल के जश्न पर भी रोक लगा चुकी है। बाजारों में होने वाली भीड़ पर काबू पाने के लिए और इवन की व्यवस्था लागू की गई है। सरोजनी नगर में दुकानें और इवन के आधार पर ही खुल रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा माओवादी केंद्र का 8वां राष्ट्रीय महाधिवेशन आज से काठमांडू में हुआ शुरू। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा समेत विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। प्रथम राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर आज विभिन्न कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति भंडारी ने कहा ज्येष्ठ नागरिकों के सम्मानपूर्वक जीवन यापन का वातावरण बनाने की है जरूरत। आगामी राष्ट्रीय सभा चुनाव की सुरक्षा के प्रबंध के बारे में केंद्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में हुआ विचार विमर्श और तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए भारत सरकार ने राजधानी दिल्ली में लगाया कर्फ्यू। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार। शुभरात्रि।